interview with Dhananjay Tripathi in Delhi on 19th of May 2018. The recording begins now.
जी हमारा नाम धनंजय है और हम चार पांच जनरेशन से बनारस में ही रह रहे हैं और हमारी 12th तक की पढ़ाई यूपी बोर्ड से बनारस में ही हुई. उसके आगे की हायर एजुकेशन की जो भी कोर्सेज हैं यूजी पीजी और पीएचडी प्रोग्राम सब बीएचयू से ही हुए हैं और अभी पीएचडी चल रही है हमारी.
अच्छा, और घर में परिवार में कौन है? और
मम्मी पापा हैं और हम तीन भाई हैं.
तो आप इस ये जो बनारस में ये जो बीएचयू में जो जो चीज़ें हुई जो सॉर्ट ऑफ आंदोलन जैसा हुआ उसके बारे में मतलब कैसे जुड़े एंड आप कब से इन लोगों को जानते हैं और कैसे आप इसके साथ इवॉल्व हुआ ये मुद्दे कैसे हुए वो थोड़ा अगर बताएंगे.
हमारा अपना व्यक्तिगत जो संपर्क रहा है वो 2005-06 से जो यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर था हमारा उस समय एक बीएचयू के ही साथी की डेथ हुई थी और थोड़ा समझना पड़ेगा इस विषय को. उस इशू पर एक इंक्वायरी सेटअप हुई थी और उसको लेकर हम जो आरटीआई से उस रिपोर्ट को निकालने में एक स्ट्रगल था. उसके दौरान जो बनारस के स्तर पर एक आरटीआई कैंपेन था उसका मंच हमने ज्वाइन किया और यूपी भर में उस कैंपेन के चैनल्स थे उससे जुड़ाव हुआ. और उस दौरान जो राइट बेस्ड चीज़ें थी हमको महसूस हुआ कि सिर्फ हमारी ही नहीं है बहुत लोगों की समस्या है. उसके बाद हम एक तरीके से आरटीआई लोगों को सिखाना समझाना जो बीएचयू के स्ट्रीट वेंडर्स थे आसपास के जो डेली वेजर्स थे उनके साथ थोड़ा जुड़ाव हुआ और एक लंबा समय उन लोगों के साथ उनकी राइट बेस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ जुड़ा
कौन
रहा.
से साल था?
ये मतलब 2005-06 से करीब 8-10 साल तक हम सिर्फ इस चीज़ों में हम खुद हमारा अपना जुड़ाव रहा है. लेकिन उस दौरान एक चीज़ महसूस होती थी जो आप इस मूवमेंट से कनेक्ट करने के चीज़ों में देख सकते हैं. स्टूडेंट कैंपसेस में हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स का समाज से कनेक्ट होने का जो कि 2005 की शिक्षा नीति भारत सरकार की भी कहती है कि हमारी शिक्षा को किताबों से बाहर निकल के समाज से कनेक्ट होने वाला होना चाहिए ये हमारी शिक्षा नीति कह रही है. और उसके बावजूद जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हमारे पास हमने कुछ प्रोग्राम्स डेवलप किए जिसमें हमने साल भर की परीक्षा प्रणाली की जगह सेमेस्टर्स ला दिया जिसमें स्टूडेंट्स बिजी रहने लगे. तो जो शिक्षा नीति का जो टास्क था जो टारगेट था वो हमने समाज से न जोड़ के उनको अपनी ही किताबों में फंसा के उनको हमने फंसाया और बिज़ी रखने की कोशिश की. इस दौरान जो मतलब जो एक एडोलसेंस का पीरियड होता है एडल्ट का पीरियड होता है जिसमें हम आदर्शवादी होते हैं जिसमें हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं चीज़ों को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं वो छात्रों में एक लंबे समय से घुटन थी. वो घुटन आप सिर्फ बीएचयू में ही नहीं किसी भी कैंपस में आप जाइए तो एक आम छात्र जो है वो आपको घुटता हुआ महसूस आप करेंगे. या तो वो अपने समाज के साथ सोशलाइजेशन के उस प्रक्रिया में चल रहा है जिसमें वो वैसा ही आदमी बन रहा है जैसा समाज में है यूनिवर्सिटी के बाहर और दूसरे लेवल पर वो अपने अंदर एक स्ट्रगल एक फाइट कर रहा है जिसमें कि वो अपने उस आदर्श से जिसमें वो अपने कमरों में भगत सिंह की तस्वीरें लगाता है उससे लड़ता है क्योंकि वो भगत सिंह बन नहीं पाता है. तो इस दौरान आप जब बीएचयू मूवमेंट से हम सीधे सीधे उसको जोड़े तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो काम करती है वो शिक्षा विभाग करता है. हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है जिसको एचआरडी कहते हैं उसकी एक यूजीसी एक विंग है और उसको लेते हुए जब हम बीएचयू में आते हैं तो उसके पास जो प्रोग्राम्स थे वो प्रोग्राम इसके पहले 2014 के पहले जो थे इसको हम इस वजह से जोड़ रहे हैं क्योंकि 2014 में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ इंडिया में तो उसके पहले जो सरकारें थी वो स्टूडेंट्स के साथ ऐसे प्रोग्राम लेकर थीं जिनमें वो स्टूडेंट्स राइट्स को बहुत ज़्यादा काटती नहीं थी जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह थी पीएचडी प्रोग्राम्स की थोड़ी खुली छूट थी जिसमें लोगों को कैंपस में चीज़ों के साथ जुड़ने का अलग अलग विचारों के साथ जुड़ने का बात करने का कोशिश करने का की छूट थी. भले ही वो यूनिवर्सिटी के बाहर आते थे तो वो कोशिशें फेल रहती थी लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिस करने की स्थिति में रहते थे. वो प्रैक्टिसेस 14 के वो लेकिन उस समय भी घुटन था लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी. उस दौरान हम लोग 14 के बस जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ एक बड़ा चेंज हुआ, जिसमें कि हम उस चीज़ को देख पाते हैं जिसमें हम लोगों के साथ एक भारत के एक अच्छे समाज सेवी हैं, काफ़ी नाम है उनका समाज के क्षेत्र में काम करने के क्षेत्र में, प्रोफेसर संदीप पांडे, वो BHU IIT ज्वाइन किए और उनके थ्रू BHU के छात्रों में वो पहली बार कोई प्रोफेसर साथ में किसी भी कार्यक्रम में, जो कि स्टूडेंट्स का प्रोग्राम रहता था उसमें वो शामिल होने लगे। पहली बार स्टूडेंट्स को ये महसूस हुआ कि टीचर और स्टूडेंट दो अलग अलग एंटिटी नहीं हैं, टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहते हैं और वो यूनिवर्सिटी को बनाते हैं। तो संदीप के साथ और भी टीचर्स इन्वॉल्व होने लगे स्टूडेंट्स के कार्यक्रम में, जिसमें हम लोग ऐसी चीज़ें करना शुरू किए जिसमें हम लोग कुछ फिल्में दिखाना शुरू किए, उन फिल्मों पर डिबेट करना शुरू किए आसपास BHU के आसपास। BHU जो सातवां वेतन आयोग का अच्छी सैलरी पाता है, सभी टीचर्स की 1,00,000+ सैलरीज है, उन टीचर्स के और उन उस इन्वायरमेंट के लोगों को, जो कि बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, उस इन्वायरमेंट में लोगों को ये पता चला कि BHU से जस्ट बाहर जुड़ा हुआ एक समाज है जिसको कि मुसहर बस्ती कहते हैं, और जिनके घरों में उनके डेड बॉडी ले आने के लिए भी फैसिलिटी नहीं है, जिनको पानी पीने के लिए जो कुआं है उसमें उस एरिया का सीवेज जाता है, सिर्फ एक कुआं है और उसमें करीब 200 से 300 परिवार हैं जो उस पर आश्रित हैं, और ऐसे तमाम चीज़ें, मुसहर बस्ती है, उसके बाद ऐसी ऐसी बस्तियां हैं जिनमें कि सिर्फ उनके बच्चे भीख मांगते हैं और काम करते हैं। BHU के ही टीचर्स के घरों में उनकी पत्नियाँ बर्तन धोती हैं और उनके घर में काम के नाम पर बेरोजगारी के अलावा, नशे के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। उन जगहों से स्टूडेंट्स जुड़ना शुरू किए। ये जो जुड़ाव था ये स्टूडेंट्स को जो उसके पिछले 10-12 साल की जो उसके पिछले जो यात्रा थी उसमें जो वो घुटन महसूस कर रहा था उसमें कुछ कार्यक्रम उसको मिले, जिन कार्यक्रमों के सहारे वो समाज से खुद को कनेक्ट महसूस करना शुरू किया। उसे ये महसूस हुआ कि जो वो घुटन महसूस कर रहा था उसकी कोई प्रतिक्रिया, कोई आवाज़ हो सकती है जिसको कि हम समाज में खुद ले जा सकते हैं। हम किसी एक लीडर का नाम हम नहीं ले रहे हैं कि संदीप कोई लीडर हैं, लेकिन संदीप के रास्ते स्टूडेंट्स ने वो रास्ता पाया जहाँ पर कि वो अपनी जो भी उसके अंदर जो वॉइस थी उस वॉइस को समाज के सामने रख पा रहा था, और वो तमाम रास्ते थे, वो आप RTI के सेमिनार्स कह लीजिए BHU में होना, या आप स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खड़े होना कह लीजिए, या मुसहर बस्तियों के साथ होने वाले काम, या फिल्म, ऐसी फिल्में जो जिन फिल्मों पर हम आमतौर पर समाज में देखते हैं कि कहीं प्रतिबंध है, कहीं लड़ाई हो रही है, उन फिल्मों पर देखना और उन फिल्मों पर बात करना, और जैसे आप एक आमतौर पर देख सकते हैं कि जो पानी का बिजनेस है बनारस में, एक बहुत बड़ा सवाल है कि बनारस वेस्ट, जो वाराणसी का वेस्ट एरिया है, पश्चिम का इलाका है, वहाँ पर कोका कोला और पेप्सी के प्लांट हैं जो कि ईस्ट इंडिया के बड़े एरिया को उसी एक ही जगह से सप्लाई मिलती है, और उस एरिया का पूरा ज़मीन सूखा घोषित हो रहा है, उस एरिया में खेती पूरी इस तरह से बर्बाद हो रही है, उस एरिया में कैंसर के और अदर जो स्किन डिसीज़ हो सकती हैं उस तरह के तत्व पाए जा रहे हैं, उस एरिया का बुरा हाल था। उस एरिया में स्टूडेंट्स वहाँ से जाना शुरू किए BHU से, IIT ने रिसर्च शुरू किया वहाँ पर कि कोकोला और पेप्सी से जो नुकसान हो रहा है उसकी स्टडीज शुरू हुई। एक BHU को इस दौरान कुछ रास्ता मिला, और उसमें से जो कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स थे जिनमें थोड़ी लीडरशिप इवॉल्व हुई, जो नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई देना शुरू हुए, वो स्टूडेंट्स आगे कुछ और बढ़े, जिनमें कि हम जो कि समाज को दिशा देने वाली लाइन होती है, जिनमें वो अपनी कुछ वैचारिक लाइन क्लियर करने लगे, जिसमें वो अपनी कुछ राजनीतिक धारा बनाने लगे। निश्चित रूप से वो धारा हमेशा से समाज को पसंद नहीं आती है, चाहे वो भगत सिंह का पीरियड रहा हो, चाहे वो किसी भी युवा क्रांतिकारी पॉलिटिशियंस का रहा हो। वो यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट्स खड़े होने लगे जो महिलाओं की बराबरी की बात करने लगे, जो रिजर्वेशन के इशू पर समानता की बात करने लगे। जब वो ये बातें करने लगे तो समाज में, उसी समाज से एक धड़ा निकला जिसने कहा कि हम ऐसे ही चलेंगे। इसके बाद वही चीज़ें शुरू हुई, RTI से हमने फैक्ट्स निकाले, और उन फैक्ट्स निकालने के क्रम में हमें समझ पता चला कि बॉयज़ के हॉस्टल की टाइमिंग अलग है, गर्ल्स के हॉस्टल की टाइमिंग अलग है। बॉयज़ का मेस का मेन्यू जो है वो अलग है और गर्ल्स का मेस का मेन्यू अलग है। ये गैर बराबरी कागज़ पे पता चली। गर्ल्स से एफिडेविट लिया जाता था, बॉयज़ से एफिडेविट नहीं लिया जाता था। डेली वेजर्स को एक लंबे समय से सारे तमाम कानूनों के बावजूद ऐसे रखा गया था जैसे कि वो बधुआ मजदूर रहे हैं। उन डेली वेजर्स के साथ जुड़ा हुआ जिसमें हम लोग ने तमाम समता समानता की बात की और उसी क्रम में हमें लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की बात समझ में आई क्योंकि वो लगातार उसको दबाया जा रहा था। और उसको दबाने के क्रम में कैंपस में एक स्ट्रगल शुरू हुआ जो कि ऐसी वॉइस जो हाशिए की आवाज़ें उठना शुरू हुई थी, चाहे वो गर्ल्स का इशू रहा हो, महिलाओं की बराबरी का इशू रहा हो, खाने पीने की बराबरी का इशू रहा हो, साधारण सी सुविधाओं का इशू रहा हो जिसमें लाइब्रेरी को खोलने का इशू रहा हो 24 घंटे, बसेस की मांग हो, कैंटीन की मांग हो, ये छोटी छोटी डिमांड्स जिसमें कि बड़े समानता की, आज़ादी की, अभिव्यक्ति की बातें छुपी हुई थी, वो सारे सवाल धीरे धीरे शुरू हुए, खड़े हुए। और उन सवालों को शुरुआती तौर पर प्रशासन ने, जो विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने बुरी तरह से दबाया।
मैं थोड़ा सा एक मिनट आपको पॉज करना चाहूँगी कि जब आप ये जो पूरी घटनाएं बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा अपना रोल आप अगर थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए चले
जी
कि आप यहाँ कहाँ कहाँ थे, ताकि वी अंडरस्टैंड कि आपकी क्या मतलब इस ये जो कह रहे हैं ये कहानी आपकी है, मतलब आपकी एक नज़रिया से दिखा हुआ मूवमेंट को कैसे आप देख रहे हैं वो है। बट यू ऑल्सो टेल अस व्हाट योर रोल वाज इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स।
असल में जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो हम आपको सिर्फ सुनने के लिए हम थोड़ा दूसरे नज़रिए, हो सकता है हमारे शब्द उस तरीके के हों, लेकिन हम इन सारे चीज़ों में हम लगातार इन्वॉल्व रहे। एक शुरुआती दौर में आप कह सकते हैं हम NSUI जो संगठन है उस संगठन से जुड़ाव रहा, और उसके बाद एक समय के बाद NSUI जो केंद्र स्तर में उसकी जो मात्र संस्था है वो कांग्रेस जो थी उसके साथ बहुत ज़्यादा असहमतियों की वजह से हम सिर्फ राइट बेस्ड चीज़ों को, समाज से जुड़े हुए कामों में इनमें जुड़े रह गए, जिसमें कि BHU से जुड़ा हुआ जो स्ट्रीट वेंडर्स का यूनियन है, मुसहरों की बस्तियां जो हैं जिनके बारे में हम बता भी रहे हैं, जो बनारस पश्चिम का इलाका है जहां पेप्सी और कोक के प्लांट हैं, उन जो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं पानियों को, उनका सवाल है, इन सवालों के साथ जुड़ने लगे। और इनके साथ हम इस जो समितियां हैं, जो यूनियंस हैं, उनके साथ हम काम कर रहे थे। और BHU में एक जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर्म हुई इस दौरान जो ऐसे, और ये कमेटी ऐसी थी जो एक तौर पर आप सतही तौर पर आप देख सक कहने को कह सकती हैं कि जो गैर दक्षिणपंथी ताकतें थी वो एकजुट हुई। बट उसमें ये भी हुआ कि जो भी स्वतंत्र आवाज़ें थी, इंडिपेंडेंट जितनी वॉइसेस थी, इवन कि इंक्लूडिंग ABVP भी हम उसको जोड़ रहे हैं, जो भी छात्र सोचते थे कि हमें एक नया समाज चाहिए, जो घुटन चल रही है उससे हमें निजात चाहिए, वो सभी लोग उसमें शामिल हुए और उस जॉइंट एक्शन कमेटी में हम भी एक सदस्य रहे। और उस पूरे मूवमेंट में उस जो RTIs लगी अपनी तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं मतलब उस सारे प्रश्नों के जो बनाना था उस सब में हम लोगों का साथ रहा। और वो पूरा स्ट्रगल जिसमें हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान किए, रातों को लाइब्रेरी खोलने के लिए रातों को पढ़ाइयाँ हुई, सड़कों पर बैठ के स्ट्रीट लाइट्स में तमाम मेमोरेंडम देना, डेमोन्स्ट्रेशंस करना, हंगर स्ट्राइक पे जाना और पुलिस की गिरफ्तारी और तमाम जितने भी चीज़ें हुई उस पूरे मूवमेंट के दौरान, उस पूरे मूवमेंट में संभवतः 95% से ज़्यादा जगहों पर हम मौजूद रहे।
तो मतलब मैं जितना समझ पाई हूँ कि आप और कुछ जो लोग हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स ने भी जब अपनी बात बोले तो आपको, दिवाकर को, ऐसे लोगों को थोड़ा भैया करके कि वो भैया थे, उन्होंने ये करा, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि आप थोड़ा सा सेंट्रल एंड लीडरशिप सॉर्ट ऑफ पोजीशन में थे, इनमें थोड़ा सा इनको दिशा देने वाली रोल आप निभा रहे थे उस दौरान?
ये एक मुश्किल है जिससे हम पर्सनली भी स्ट्रगल कर रहे हैं। गांधी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं और उसमें सबको एक बराबर रखने की बात करते हैं। शायद हम उस मामले में खुद को फेल मानेंगे जब हमारे साथी हमको लीडरशिप दे रहे हैं। तो हमारी लगातार कोशिश यही रही कि हम एक टीम के तौर पर काम करें और हम सब लोग मिलकर एक साथ एक फ्लोर पे, एक मंच पे बैठ के काम करते थे और एक साथ चीज़ों को तय करते थे, तय करते हैं इवेंट की। उसमें शायद लीडरशिप की कोई बात नहीं है, हाँ साथ में काम करते जरूर हैं।
23 तारीख वाला जो घटना था उसकी थोड़ा सा आगे पीछे आप थोड़ा बताएंगे कि क्या, कैसे शुरू हुआ आपको लगता है, और उस दौरान आप कहाँ थे और आपका क्या रोल था?
जी, 23 सितंबर एक्चुअली सीधे वो एक्शन का डे था। हम इसको 21 सितंबर से जोड़ेंगे। 21 सितंबर को एक अपनी ही साथी छात्रा के साथ, जो कि फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी, उसके साथ छेड़छाड़ की एक घटना हुई, जो कि मतलब प्रशासन के उसी तरीके की वजह से जिसमें हमारा समाज लड़की को दूसरे दर्जे की नागरिकता देता है, उसमें उस समाज ने, उस एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन तमाम स्टाफ्स ने उस लड़की को उसी जो मॉरल पुलिसिंग की बात होती है वैसे ही उसको डील किया। वो जो छेड़छाड़ की घटना थी वो मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता तो वो कैसे भी हल कर लेता, लेकिन हम उसको हल करने में असफल रहे। BHU प्रशासन के तौर पर हम कह रहे हैं, एक परिवार एक उसके तौर पर कह रहे हैं कि BHU उसमें फेल रहा। उन गार्ड्स ने और प्रोक्टोरियल बोर्ड के स्टाफ्स ने, वार्डन ने, हॉस्टल की जो वार्डन थी, चीफ प्रॉक्टर ने, और वो तमाम लोग जो उस लड़की से और उस लड़की के सपोर्ट में आने वाले हम लोगों से बातचीत किए, वो सब लोग लगातार हम लोगों को उस समय हमारी वॉइसेस को क्रश करना चाह रहे थे। और हमारी वॉइस उस समय, शायद हम गलत शब्द बोल रहे हैं, हमारी सिर्फ शिकायत थी। हम उस समय वो सिर्फ शिकायत हम सुनाना चाह रहे थे। वो शिकायत धीरे धीरे जब अनसुनी रह गई तो वो एक वॉइस के रूप में तब्दील हो गई, जिसमें कि वो तमाम हॉस्टल के स्टूडेंट साथी थे जिनको कि रात को बंद कर दिया गया, जिनमें उनको शिकायत करने के लिए उनको रोका गया कि वो शिकायत करने पुलिस के पास न जाएं और बाहर अपने और दोस्तों से न कनेक्ट हो पाएँ, ये तमाम चीज़ें रोकी गईं। और जो कि 22 सितंबर की सुबह को एक बहुत एक प्रतिक्रिया स्वरूप सारे स्टूडेंट गर्ल्स ने खुद ही उस जिस हॉस्टल से वो रहती है, जो साथी है, उन्होंने एक कॉल ली और 22 सितंबर की सुबह को वो लोग BHU गेट पर थे, और BHU गेट पर वो थे और शायद उस दिन भी, अगर ये उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि VC से मिलना है उन्हें और इस इशू पे बात करना है, और VC मिलने को तैयार नहीं हो रहे थे। और 22 सितंबर को ज़िले का एडमिनिस्ट्रेशन भी आया और तमाम लोग यही प्रयास करते रहे कि VC से बातचीत हो जाए, लेकिन VC बातचीत करने को किसी लेवल पर तैयार नहीं थे। VC का ये कहना था कि कोई स्टूडेंट, किसको हम स्टूडेंट प्रतिनिधि माने, और हमें ये समझ में नहीं आया कि जब एक प्रशासन के तौर पर वो खुद फेल थे कि जब उन्होंने कोई प्रतिनिधित्व करने वाली मंच बनाया ही नहीं तो वो प्रतिनिधि मानेंगे किसको। अगर वो बनाए होते कुछ प्रतिनिधित्व करने वाले मंच तो शायद ये मसला आता नहीं। और उनको इसकी जगह सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए थी कि उस स्टूडेंट से, सिर्फ उस स्टूडेंट से मिल लेते वो जिसके साथ ये घटना हुई थी, तो मसला बहुत हद तक क्लियर हो जाता। लेकिन वो बहुत देर के बाद कुछ टीचरों के सहारे उस स्टूडेंट को बहुत देर तक धमकाना, करीब 8-9 घंटे उसको अलग से ले जाके बिठाना, और उसका एक रिलेटिव है BHU में ही अपने साथ, जो कि लड़का है जिसने बहुत सपोर्ट किया उसको, उसको डराना धमकाना और कि उसका करियर बर्बाद कर देंगे और इस तरह का जितने तमाम तरह के हथकंडे होते हैं प्रशासनिक, वो लगाना। और इस दौरान उस लड़की और उस लड़की के साथ उसकी, उस हॉस्टल के दोस्त और हम सारे लोग जो जॉइंट एक्शन कमेटी के रहे, और बनारस की जो सिविल सोसाइटी थी और जो उस तरीके की जो इंडिपेंडेंट वॉइस थी जो कि सपोर्ट करने के लिए इन चीज़ों में साथ खड़ी हुई कि नहीं वाकई छात्रों की बात है और छात्रों की जो आवाज़ है वो सही है, इसके साथ जो लोग खड़े हुए वो एक ऐसी संख्या बनती चली गई विश्वविद्यालय के गेट पर। सारा स्टूडेंट जो एंट्री था, तमाम अपने छोटे छोटे जो क्लासेस का, डिपार्टमेंट्स का और छोटे बड़े जो अपने संगठनों का बैरियर तोड़ के वो सभी छात्र छात्राएं एक साथ एक मंच पर थे। और इतनी गर्ल्स, शायद आप उस समय के फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ देख सकते हैं, इतनी गर्ल्स शायद ही किसी मूवमेंट में किसी कैंपस से एक साथ निकली हों। वो सभी गर्ल्स स्वतः स्फूर्त थी, स्पॉन्टेनियस वो संख्या आई थी। और वो लोगों का एक वो जो घुटन जो हम बार बार कह रहे हैं, वो घुटन जो गैर बराबरी की बात थी, जो महिलाओं को उद्वयन दर्जा देने की बात थी, जिसके हम लोग लगातार ब्रोशर्स बांट रहे थे, जिसके बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे थे, वो बात उस दिन उस लड़की के समर्थन में किसी न किसी रूप में एक प्रतिक्रिया दे रही थी। और वो सारी लड़कियाँ बार बार ये कह रही थी कि हम सिर्फ इस लड़की के लिए नहीं खड़े हैं, वो खुद के लिए खड़ी हो रही थी। और वो जो हॉस्टल्स के गेट को तोड़ के जब वो निकली हैं लड़कियां रात को, तो वो उनकी खुद की एक, उनको एक फ्रीडम मिला, एक आज़ादी मिली। और वो जो आज़ादी थी, जो उनकी मतलब उनको जो महसूस हो रहा था उस दिन, वो महसूस होना एक आंदोलन का रूप ले लिया BHU में। और जिसको कि समझने में हमारा प्रशासन, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था और हमारा जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इक्वली फेल था उसको समझने के लिए, वो समझ नहीं पा रहा था। और उस दौरान वो लोग आमतौर पर जैसा एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसने लाठी चार्ज किया, उसने नहीं देखा कि वो लड़के को मार रहा है कि लड़की को मार रहा है, वो स्टूडेंट को मार रहा है कि टीचर को मार रहा है, वो किसको मार रहा है, किसको पीट रहा है, कहाँ चोट लग रही है, इसको देखना उसने छोड़ दिया। और आधी रात को, जबकि चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसने लाठी चार्ज किया, लोगों को मारा पीटा, चोट लगी और उस आंदोलन को क्रश करने की कोशिश की, जैसा कि आमतौर पर होता है।
आपको भी चोट लगी थी? आपको भी लाठी
चार्ज लगी थी? नहीं, उस दौरान हम उस समय रात को लाठी चार्ज के दौरान, क्योंकि लाठी चार्ज जो हुआ था वो ज़्यादातर जो गर्ल्स हॉस्टल थे उनके आसपास और उन पर हुआ था, तो और उसके बावजूद लड़कों को भी चोट आई थी। लेकिन संजोग, जब जो शुरुआती लाठी चार्ज हुआ था, वो असल में 23 तारीख को धरना जो था वो दो जगह बट गया था, एक विश्वविद्यालय के गेट पर हो रहा था और दूसरा VC लॉज के सामने हो रहा था, जहाँ पे VC रहते हैं। छात्रों का एक समूह VC से डिमांड करने के लिए एग्रेसिवली आगे आया था, क्योंकि 22 की सुबह से सब लोग रोड पे बैठे हुए थे, 22 की पूरा सुबह रात और 23 का पूरा सुबह और रात हो रहा था। तो 23 को ये स्थिति बन गई थी कि सब लोग अब परेशान हो रहे थे कि क्यों नहीं बात कर सकते हैं, कुलपति एक VC अपने बीच में क्यों नहीं बात कर सकता है। तो उस VC लॉज के बाहर जो छात्र ज़्यादा जुटे हुए थे, लाठी चार्ज वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ पे छात्रों को ज़्यादा चोटें आईं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को और गर्ल्स को भी, गर्ल्स स्टूडेंट को भी, बॉयज स्टूडेंट दोनों को चोटें आईं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे ये दो घटनाएं हुई, लाठी चार्ज VC लॉज पर हुआ और उसके बाद जो BHU गेट पर हम लोग थे, हम लोगों का वहाँ पर धीरे धीरे जो क्राउड था, वो जो भी हमारी संख्या थी, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके लोग आकर वहाँ पे परेशानी प्रोक्टोरियल बोर्ड के शुरू कर दिए थे। उसके बाद हम लोग जो चोट लगी थी उन लोगों का इलाज कराने में, हम लोग चूँकि थोड़ा सीनियर स्टूडेंट्स होने के नाते हॉस्पिटल में आना जाना और इन सब चीज़ों में थोड़ा एकाएक बिजी हुए, और उस दौरान फिर लाठीचार्ज हॉस्टलों में भी होना शुरू हुआ और लड़कियों को खाली कराया गया। उसी दिन ये घोषित किया गया कि सीधे हॉस्टल्स को खाली करना है और सारी लड़कियों को बाहर करना है, उनको अपने घर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
अगर आप अभी अगर आप सोचते हैं तो क्या लगता है कि क्या चीज़ ऐसा था जो इस आंदोलन में थोड़ा बेहतर करा जा सकता था? मतलब वीकनेस नहीं, मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट कि व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, आज के तारीख में अगर आप सोचते हैं, मतलब क्या चीज़ अलग हो सकती थी इस पूरे जैसे क्रम चला?
मतलब आप मतलब ये हम छात्रों की तरफ से क्या और अच्छा हो सकता था, ये आप पूछना चाह रहे हैं?
अच्छा, या कुछ अलग क्या और हो सकता था?
अच्छा, मतलब और बेहतर हम क्या कर सकते थे? जी,
और डिफरेंटली और क्या, मतलब डू यू थिंक देयर वाज अ नीड टू डू एनीथिंग डिफरेंटली?
हाँ बिल्कुल, शायद, लेकिन उसमें एक कमी थी, हम लोगों की दिक्कत ये थी कि हम लोगों की वो असल में आपको हमने एक बात बताई कि हम उस तरीके से हम मतलब आपको और थोड़ा एकदम से पीछे ले जाना चाहेंगे। आज़ादी के समय अंबेडकर ने एक वॉयस दी, जो कि एक लंबे समय से भारत में जो दलित दबे कुचले थे उनको अम्बेडकर ने वॉयस दी, अंबेडकर उस समय राजनीतिक शक्ति नहीं थे, लेकिन वो एक वैचारिक शक्ति के रूप में उभरे। दलितों को ये महसूस हुआ कि कोई हम भी बराबरी में बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय वो राजनीतिक शक्ति नहीं बन पाए। वो एक लंबे समय में स्ट्रगल करते हुए आज अंबेडकर एक आइकॉन बने हैं और आज वो दलित बराबरी में भारत समाज में बात कर रहा है। हम आपको उसी तरह वापस ले जाना चाहेंगे अपने कैंपस में। कैंपसेस की जो स्थिति है उसमें स्टूडेंट को बुरी तरह से दबा के रखा गया है। भारतीय जो शिक्षा पद्धति है इस समय, उसमें स्टूडेंट्स की जो वॉयस है वो बुरी तरह से कुचली जा रही है। उसको अपना आइडेंटिटी वो ढूंढ रहा है, परेशान है वो, उसे पता नहीं चल रहा है कि उसे क्या बात और कैसे रखनी चाहिए। वो एजुकेशन के मसले पर वो नहीं समझ पा रहा है कि उसे जो वो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है और उसका फ्यूचर क्या है। सिर्फ करियर के तौर पर ही नहीं, एक समाज के सदस्य के रूप में वो आगे क्या करेगा उसे नहीं समझ में आ रहा है। इन तमाम सवालों के साथ झगड़ते हुए जब वो किसी छोटे से प्रेशर के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे नहीं पता होता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे बात करना है या मीडिया से कैसे बात करना है या उसे अपनी बात कैसे रखनी है। इन सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए या जो खुद की तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी का अभाव निश्चित रूप से इस आंदोलन में भी था और देश भर में इस समय भारत में जो भी आंदोलन चल रहे हैं छात्रों के विशेषकर, उसमें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। उसमें जो बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं जिसमें हम और छात्रों को अपनी बात बाइनरी से बचने के साथ साथ, मतलब प्रशासन वर्सेस छात्र होने की जगह हम प्रशासन के साथ होकर हम उस सवाल को खड़ा कर सकें। निश्चित रूप से कई टीचर भी अपने साथ सपोर्ट में आए, लेकिन उन टीचर्स को हम साथ में ले नहीं पाए क्योंकि वो जो वहाँ का माहौल था, वो जब नारे लग रहे थे तो वो पूरे विश्वविद्यालय के खिलाफ लग रहे थे और कोई टीचर फ्रेंडली भी होकर आ रहा था तो हम उससे उस तरीके से बात करने की स्थिति में नहीं थे। हमारे ही बीच में बहुत गुस्सा निकल रहा था जो कि बहुत स्वाभाविक सा है और वो स्वाभाविक गुस्से को कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। जब आप एक सवाल उठाते हैं तो आपके बीच में जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। उस मामले में हाँ, शायद अभी काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसे तमाम जो स्टूडेंट स्ट्रगल देश भर में चल रहे हैं वो समाज में किसी तरह का परिवर्तन कर पाएंगे, इस पर सवाल है क्योंकि उनकी अपनी खुद की तैयारी, वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के साथ, इसलिए वो किस दिशा में इस समाज को लेके जाएंगे इस पर हमें सोचना होगा।
इस मूवमेंट की उपलब्धियाँ क्या रही, आपको क्या लगता है?
एक किसी ऑब्जेक्टिव उपलब्धि के तौर पर तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट हमें हासिल हुआ हो ऐसा हम नहीं कह सकते आपको। कोई टारगेट ऐसा, जो डिमांड्स थी वो सब हमारे नहीं पूरे हुए, लेकिन सब्जेक्टिव डिमांड्स पूरे हुए हैं। सब्जेक्टिव डिमांड्स ये थे कि गर्ल्स की वॉइस, वो तमाम गर्ल्स स्टूडेंट्स लिखना बोलना पढ़ना शुरू की हैं, जो कि वो अपने कोर्स से बाहर की बात, और वो समाज में अपनी लड़ाई के साथ साथ समाज की लड़ाई भी लड़ रही हैं। आज वो एक BHU में RTI एक्टिविस्ट्स का एक चैनल है जो कि समाज में लोगों को मदद कर रहा है। वो बनारस में घट रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहा है। एक चैनल बना है स्टूडेंट्स का,
जी जरिया बना है।
जी एक, हाँ एक जरिया, एक नेटवर्क बना है हॉस्टल्स के बीच में, गर्ल्स के बीच में एक संबंध बना है जो एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन के रूप में देखती थी एक दूसरे को, कि एक हॉस्टल का विंग दूसरे हॉस्टल के विंग से लड़ता था, वो हॉस्टल का विंग आपस में आज एक नेटवर्क के रूप में है। वो भले प्रशासन के अगेंस्ट हो लेकिन लड़कियों का, लड़कों का एक नेटवर्क बना है जिसमें वो साथ रह रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, साथ में कविताएं पढ़ रहे हैं और तमाम रचनात्मक कार्यक्रम जिसको हम क्रिएटिव प्रोग्राम्स के रूप में देख रहे हैं वो कर रहे हैं। ये एक उपलब्धि है, आने वाले समय में हम कुछ बदलाव करेंगे।
आपने लिए क्या बदला, मतलब आपको क्या लगता है इस मूवमेंट के बाद आप में क्या बदलाव आया आपने पर्सनली?
हमारा परिवार बड़ा हो गया। जो सिर्फ मम्मी पापा और तीन भाई थे वो परिवार बहुत बड़ा हो गया है। जब हम बनारस में रहते हैं तो BHU एक परिवार है हमारा और वहाँ पे तमाम अपने जो साथी हैं वो साथी बहुत कुछ फ्यूचर के प्रति एक आशान्वित करने वाला। इस समय समाज में जब राजनीति बुरी तरह से एक बुरे दौर में गुजर रही है, पूरी तरह से बाजारू हो चुकी है, जब समाज के अपने जो अंदरूनी बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं, ऐसे समय में जो पूरा हमारा ताना बाना जो भारत के संविधान हमें दिया हुआ था वो जो टूट रहा है, वैसे समय में छात्रों की ऐसी दोस्ती जो कि बहुत साफ हो, जिसके पीछे कोई किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो, जिस संबंध में कोई इलीगलिटी ना हो, कोई गड़बड़ी कोई बुराई ना हो, ऐसा संबंध ऐसे लोग दोस्त मिले हैं और वो लोग लगातार समाज की चीज़ों से जुड़ रहे हैं, ये एक उपलब्धि है, ये हमारे लिए एक बड़ी चीज़ है जो कि हम काउंट कर सकते हैं अपनी।
आगे का क्या प्लान है, अपनी पर्सनल लेवल पे क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं इसके आगे?
हम आपको जैसा बताए कि राजनीति और समाज बुरे दौर से गुजर रहे हैं भारत के, विशेषकर इसको हम ऑब्जेक्टिव रूप में देखते हैं कि 2014 में एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब हुआ है, लेकिन एक लंबे समय में हमारे समाज में जाति और धर्म के बड़े खाइयां गढ़ी गई हैं, बहुत लंबे हमारे बीच में दूरियां बनी हुई हैं, हमारे समाज का ताना बाना टूट रहा है, इस पर कुछ करना है, इन चीज़ों को जोड़ने के लिए समाज में काम करना है और कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं जो कि पेशेवर राजनीति के नहीं होंगे, सामाजिक ताने बाने के होंगे और उसको बुनने के लिए होंगे।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू।